थोड़ा सा पीछे से पढ़ लेते हैं। ये इसलिए है कि इन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला किया, और जो अल्लाह और उसके रसूल का मुकाबला करेगा अल्लाह इसके लिए नहायत सख्तगीर है। और यह है तुम लोगों की सजा, अब इसका मजा चखो। और तुम्हें मालूम हो कि हक का इनकार करने वालों के लिए दोजख का अजाब है। ऐ ईमान लाने वालों, जब तुम एक लश्कर की सूरत में कुफार से दो चार हो तो इनके मुकाबले में पीठ ना फेरो। मुझे और आपको क्या कहा जा रहा है? हम तो मैदान जंग में नहीं जाते, पीठ किससे फेरना है? दीन के काम से कमिटमेंट करके पीछे ना पलटो। आपने साइन किए थे फॉर्म पे कि हम इस कोर्स को निभाएंगे, इसको मानना। ज़रा सी मुश्किलों में आने के बाद इनको छोड़ना ऐसा ही गुनाह है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैदान जंग से पलटना कबीरा गुनाह है। क्यों? कि फिर लोगों को हिम्मत नहीं होती। बाकी लोग कहते हैं अच्छा ये जाके पलट आए, हम नहीं जाते। जब हम दीन का काम शुरू करके बीच में छोड़ देते हैं, हम खामोश इश्तेहार होते हैं इस बात का कि इट्स नॉट अचीवेबल गोल, यू कैन डू दिस। अल्लाह अकबर। और जिसने ऐसे मौके पर पीठ फेरी, अल्लाह ये के जंगी ताल के तौर पर हो या किसी दूसरी फौज से जा मिलने के लिए, तो वह अल्लाह के गज़ब में घिर जाएगा। याद रखिए, जब बंदा अल्लाह के दीन के काम से, इस काम से, इसके तकाजों से पीछे फिरता है, तो मैंने तो कभी किसी को फलते फूलते नहीं देखा, पनपते भी नहीं देखा। ऐसी खूबसूरत सिस्टर्स मेरी आंखों के सामने आ जाती हैं, इतने तपाक से दीन का काम कर रही थी, पता नहीं क्या उनके ऊपर मजबूरी आई, क्या मुश्किल हुई, एकदम पीछे हो गई, स्पॉन्टेनियस। और याद रखिए, वो तब्दीली जो अचानक आती है वो ठीक नहीं होती, वो नफ्स का कोई जोलान होता है। इस तरह से पता ही नहीं चला किधर गई, कुछ नहीं पता किधर है। और उसके बाद एक खबर आई कि वो किसी पागलखाने में, स्ट्रेस की मजीज, परेशान है, तकलीफ है, दिल पे चोट पड़ी। मेरी आदत है, मैं जो पीछे होता मैं उसके और आगे आती हूँ। मैं खुद साथ गई उनके मिलने के, हमें पहचान भी नहीं रही, इतनी तकलीफ में, और क्या हालात थे उन बेचारी के, अल्लाह रहम करे। पता नहीं कितना अरसा वो इस हाल में रही, फिर अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ने उसकी जब हालत बदली, फिर साथियों ने रबते रखे और उनको कहा बैठिए आइए करिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जब वो दोबारा अपनी असल पे आई तो फूट फूट के रोती थी, फूट फूट के रोती थी। कहती थी मैंने कुरान को छोड़ के यहाँ से जाकर सिर्फ डिप्रेशन पाया, इतने जरासीम पड़ गए, मुझे यकीन नहीं आता था। यकीन कर, अभी भी मैं बात कर रही हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मुझे यकीन नहीं आता था कि इनको क्या हुआ है। वो कहती मुझे खुद नहीं पता मुझे क्या हुआ है, सिर्फ बहाना बनता है और इंसान अल्लाह के गज़ब में असल में घिर चुका होता है। इसका ठिकाना जहन्नम होगा और वो बहुत बुरी जाए बाज़गश्त है। बस हकीकत यह कि तुमने इनको कत्ल नहीं किया बल्कि अल्लाह ने इनको कत्ल किया, और तुमने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने उनको फेंका, अल्लाह ने फेंका। और मोमिनों के हाथ जो इस काम में इस्तेमाल किए गए, ये तो इसलिए थे कि अल्लाह मोमिनों को एक बेहतरीन आजमाइश से कामयाबी के साथ गुजार दे। यकीनन अल्लाह सुनने और जानने वाला है। ज़ालिकुम अन्नल्लाह मोहिनु कैदिल काफिरीन। और ये मामला तो तुम्हारे साथ है, और काफिरों का मामला ये है कि अल्लाह इनकी चालों को कमज़ोर करने वाला है। मैदान जंग में जब बहुत ज़्यादा हालात अबतर हुए तो नबी सल्लम खुद भी कूदे, कोई तलवार नहीं, कोई तीर नहीं, करें तो क्या करें। जब वापस गए मैदान में तो वहाँ अल्लाह के नबी ने एक मुट्ठी भरी कंकरों की, मिट्टी, छोटे छोटे कंकर, और यूँ फेंके। अल्लाह के हुक्म से वो कंकर एक एक काफिर की आँख में गए, थोड़ी देर के लिए उनकी आँखें झुंझलाईं, ऐसे हिले। ज़ाहिर जब बुखलाहट तारी हुई, हाथों से असलहा तलवारें गिरी, सहाबा ने वो पकड़ ली, मैदान पलट गया। अल्लाह उसका जिक्र करते हैं, वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। ये है बंदगी का नुक्ता, तुम नहीं अपनी आवाज़ पहुंचा सकते। तुम एक लफ्ज़ निकाल के देखो फिर अल्लाह उसको कहाँ पहुंचा देता है, किस जगह चला जाता है, तुम इसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। बात सफ़ा यकीन करें, ये गुनाहगार ज़ुबानें हैं, लेकिन अल्लाह जब जब किसी से कोई काम लेना चाहता है तो ले लेता है। वहाँ वहाँ की गवाहियाँ जमा हो जाती हैं। साथी कभी मुझे किसी ऐसी जगह का कोई नाम कोई बताते हैं जो साथ साथ आपको बताए, वहाँ कोई सुन रहा है तो मेरे आंसू आ जाते हैं। कितनी को देर लगती है बोलने में, कितनी को मुश्किल है ये दो ढाई घंटे बोलना, सारा दिन लोग सुनते हैं, कहाँ कहाँ जाता है ये दौरे कुरान। और मैं हैरान होती हूँ कि उन लोगों का अजर कितना होगा जो इसमें दिन रात कोशिशें कर रहे हैं, जिनकी एफर्ट्स के साथ ये सब कुछ जा रहा है, कहाँ जाता है। सिर्फ आप बात कीजिए, आगे अल्लाह का काम है, आप तड़प के लाइए, कोशिश कीजिए, आपको नहीं पता अल्लाह कल आपसे कितने बड़े बड़े काम ले आएगा। इसलिए फरमाया इन तस्तफ्तहु फ़क़द जाकुम अल-फ़त्ह, इन काफिरों से कह दो अगर तुम फैसला चाहते हो तो लो फैसला तुम्हारे सामने आ गया, अब बाज आ जाओ तो तुम्हारे ही लिए बेहतर है, वरना फिर पलट कर इसी हमाकत को अगर दोहराओगे तो हम भी इसी सजा को दोहराएंगे। यह इस्लाम का मिजाज। फॉर डैट, जो करोगे हम तुम्हारे साथ करेंगे, तुम वापिस आओगे मुकाबला करेंगे, तुम पलट जाओगे हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। इस्लाम ये नहीं कहता पीस बट ऑन वन साइड, एक ही तरफ से ये सब कुछ नहीं होता, ये टू साइडेड गेम होती है। इसलिए फरमाया बाज आ जाओ तो बेहतर होगा, और तुम्हारी जमीयत ख्वाह कितनी ही ज्यादा हो तुम्हारे कुछ काम ना आ सकेगी। अल्लाह मोमिनों के साथ है, क़यामत तक के कुफार को चैलेंज कर दिया, तुम जो मर्जी मिसाइल बना लो, असलहा बना लो, न्यूक्लियर बम बना लो, तुम्हारी जमात तुम्हारी कुव्वत तुम्हारे ज्यादा काम नहीं आएगी, क्योंकि अल्लाह मोमिनों के साथ है। आप देखिए काफिर किस पे भरोसा करता है, तलवार पे, तीर पे, हाय असलहा नहीं, ये कर लो जंग ना लग जाए। अच्छी बात है हथियार बनाने चाहिए, आगे सूरह तौबा में इशारा होगा, लेकिन भरोसा उस पर नहीं करना। कहते ना कि मोमिन है तो बेतेक भी लड़ता है सिपाही, काफिर है तो करता है शमशीर पे भरोसा। तो अल्लाह कहता है काफिरों को जितना कुछ मिल जाए मुसलमान, तुम फिक्र ना किया करो। देखिए एटम बम की ताकत ज्यादा है कि अल्लाह की, न्यूक्लियर बम की ताकत ज्यादा है कि अल्लाह की, और जो फ्यूचर में निकलने वाले बॉम्ब और जो कुछ एक्सप्लोजन होने वाले हैं उनकी ताकत ज्यादा है कि मेरे रब की। तो मुझे किसकी जरूरत है एटम बम और न्यूक्लियर बम बना के उसको बढ़ाने की? नहीं, मुझे ज़रूरत है अपने रब के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ने की। जितना मुसलमान अल्लाह से जुड़ते जाएंगे उतना मजबूत होंगे, और शैतान को ये बात हमसे ज़्यादा पता है, इसलिए वो और हर चीज़ में मुसलमानों को आगे ले जाएगा। नहीं ले जाता तो वो चीज़ नहीं लेके जाने देता जिससे मोमिनों में ये ईमान पैदा हो। फिर अल्लाह वो तरीके बता रहा है, पूरी सूरत तरबियती कोर्स है, ट्रेनिंग सेशन है। क्या हो तुम बनना चाहते हो अच्छे अल्लाह के बनते हो, तो या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व रसूलहु वला तवल्लौ अन्हु व अन्तुम तस्मऊन। ए ईमान वालो, किसको कहा? अपना नाम लिखिए। ये मुझे कहा। क्या कहा? अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। कब? इस क्लासरूम में बैठ के? नहीं, इस क्लासरूम से बाहर जाकर इताअत करो, और हुक्म सुनने के बाद इससे सरताबी ना करो। यानी कोई कह दे ये करो और बैठे रहो, नहीं करना, नहीं उठना, इससे बड़ा किब्र क्या होगा? इन लोगों की तरह ना हो जाओ जिन्होंने कहा कि हमने सुना, हालांकि वो नहीं सुनते। दुआ कीजिए अल्लाह मैं ऐसे लोगों में ना करना जो सुनी अनसुनी कर देते हैं। إن شر الدواب عند الله ثم البكم الذين لا يعقلون। यकीनन अल्लाह ताला के नज़दीक बदतरीन किस्म के जानवर वो बहरे गूंगे लोग हैं जो अक्ल से काम नहीं रहते। देखिए अल्लाह ने क्या टाइटल दिया, ऐसे मुसलमान गूंगे बहरे हैं जो अल्लाह की बात को सुन के उठते नहीं हैं। जुम्मे सुनते, खुतबे पढ़ते, जुम्मा पढ़ते, खुतबे सुनते, कुरान पढ़ते, लेकिन उसके तकाज़ों को नहीं समझ पाते। अगर अल्लाह को मालूम होता कि इनमें कुछ भी भलाई है तो वह ज़रूर इन्हें सुनने की तौफीक देता। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। आप सब मुबारक के लायक हैं। अल्लाह का एक असूल है, अल्लाह सिर्फ उनको सुनने की तौफीक देता है जिनके अंदर खैर होती है। देखिए एक किसान कभी ऐसी ज़मीन पर मेहनत करेगा जो बंजर हो, जहाँ बीज डलने से फ़ायदा कोई नहीं। एक लोहार कभी उस लोहे को कूटेगा जिससे कल कुछ बनना नहीं। इसी असूल को आगे लेते जाए, मेहनत कहाँ की जाती है? जहाँ कुछ हो, जहाँ उम्मीद है कि यहाँ तेल निकलेगा तो ज़मीन को खोदेगा ना कोई। जिस जगह पानी के निकलने की उम्मीद होती है तो वहाँ मेहनत की जाती है ना। बस यही असूल इधर है। अल्लाह अपने दीन की बात सिर्फ उनको सुनवाता है जिनमें खैर होती है। आप सब के अंदर खैर के खजाने भरे हुए हैं, बिलीव में। आपको नहीं पता, कुछ चेहरों से मुझे अभी भी दिखता है और मैं ज़्यादा नहीं जानती, अल्लाह को दिलों का पता है। आप अपनी इस खैर को डिस्कवर करते हैं इस किताब को पढ़ के। अगर कुरान ना पढ़ रहे होते लोग तो बहुत सारे लोग दुनिया में से ऐसे ही चले जाते, उनको पता भी ना चलता कि हमारी ज़िंदगी क्या। जिन्होंने सारी ज़िंदगी मैचिंग करने, कपड़े सजाने, घर बना के गुजारी, और बिस्तरे मार्ग पे जब गए तो हसरत और रिग्रेट, अफसोस, यास। तो अल्लाह ने सुनने की तौफीक दी है, इसको संभालें। अगर सुनना छोड़ देंगे ना तो आप इस बात का सबूत दे रहे हैं कि आपके अंदर अब भलाई नहीं रही। लेकिन अगर भलाई के बगैर वो अगर इनको सुनवाता तो वो बेरूही के साथ मुंह फेर जाते, ये भी बात समझ लें। अल्लाह कुछ ऐसे लोगों को भी मौका दे देता है सुनने का जिनमें खैर नहीं होती, लेकिन अल्लाह कहते हैं वो मुंह फेर के चले जाते हैं, पलट जाते हैं। अल्लाह ना करे हम में से कोई ऐसा हो। करो क्या अब इतनी बड़ी बात सुन के? मैं क्या करूँ, मेरा क्या मामला हो? يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم। ईमान लाने वालो, अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पर लब्बैक कहो, कहो लब्बैक। आई एम प्रेजेंट, अल्लाह मैं हाजिर, तूने बुलाया मैं हाजिर, तू जो कहेगा मैं हाजिर, तेरा काम मैं हाजिर, तू ये करने को कह मैं हाजिर, तू इससे रुकने को कह मैं हाजिर। इस पुकार का नाम बंदगी है, बंदगी इताअत का नाम है। अल्लाह की पुकार पे लब्बैक कहने वाला अल्लाह का बंदा होता है। और याद रखिए कि बंदगी के चार मुख्तलिफ दर्जे होते हैं। एक होती है इबादत कल्बी, दिल से बंदा बंदगी करता है। दूसरी होती है बदनी इबादत, बदन से जिस्म से मेहनत करके अल्लाह का बंदा बनता है। तीसरी होती है लिसानी इबादत, जुबान से कुछ बोल के इबादत करता है। और चौथी होती है माली इबादत, माल लगाता है। ये लब्बैक इन चारों पे लब्बैक कहने का नाम है कि अल्लाह मेरा दिल अब तेरे साथ, मुझे तुझसे प्यार, तेरे से मोहब्बत, सोचे तेरे दीन की, फिक्र तेरी, तेरे नबी की उम्मत का दर्द। आपका दिल अगर इस कैफियत में है ना, अगर आप उम्मत का दर्द पाल रहे हैं, तो वल्लाह ही आपका दिल हर वक्त इबादत में। और अगर आप अपने बदन को खपा रहे हैं, लगा रहे हैं, कभी चलते हैं, कभी रुकते हैं, कभी रुकू, कभी सजदे, कभी तबलीग, कभी उसकी बात, कभी आप जिस्म को पसीना खपाते, आपका पसीना अल्लाह ताला वहाँ की कस्तूरी बना देगा। आपका बदन इस रास्ते में खपना है, आप इस बदन को सलाइए और सलाइए, कितना खुश होंगे बाद में और कसरबंदी के साथ उभरेंगे। कभी आप वो कैफियत नोट करते हैं जो यहाँ से उठने के बाद होती है, जो फीलिंग वो होती है, वो तो ना अच्छे खाने खा के आती है, ना सो के उठने पे आती है, क्योंकि आपका बदन इस वक्त इबादत में। इस वक्त आप क्या कर रहे हैं? कुरान सुन रहे हैं ना, कुरान सुनते हुए आपके कान सुन रहे हैं। अगर आप ये कुरान के तर्जमे को ही ले लीजिए, तो आप इस वक्त बैठे हैं, आपकी कमर दुखेगी, आप घर से निकले, थोड़ा बहुत चल के आए, आप इस वक्त सुनने की पूरी कोशिश में, आप हर डिस्ट्रैक्शन को अपने से दूर करें, आपका बदन इबादत में। ना रुकू कर रहे हैं आप इस वक्त, ना सजदे कर रहे हैं, ना लंबे लंबे क़याम है, लेकिन आप इबादत की हालत में, क्योंकि आपका बदन इस वक्त अल्लाह के रास्ते में निकला। और घर बैठे होते तो इस इबादत से महरूम होते। फिर आप देखिए लिसान की इबादत, चलिए इस वक्त आप नहीं कर रहे, अल्लाह अगर मुझे इसका मौका दे रहा है तो दुआ करती हूँ कि इसमें गलतियों को दूर कर दे, खामियों को दूर कर, जो गलत बात निकले वो मेरी तरफ से, और जो अच्छी बात निकली वो अल्लाह की तरफ से। लिहाजा जुबान से तबलीग, किसी को तर्स तो नहीं सुना सकते, इतना नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी भी नहीं इतना भी कि आप इसकी कोशिश करें। हम दो लफ्ज़ बोल के लोगों को तो दावत दे सकते हैं। आपकी ज़ुबान की इबादत क्या है कि मंदाल अलल खैरी कफाइली, लोगों को उस बात की दावत दे दें जो खुद कर रहे हैं। आप देखेंगे करने वाले का अजर आपको मिल जाएगा और उसके अजर में कमी नहीं होगी। और फिर चौथी किस्म इबादत माल की, माल का रास्ते अल्लाह के रास्तों में लगना, कुछ ना करें। मुझे लगता है सबसे आसान इबादत माल की इबादत है, वल्लाही। वो कहते हैं ना नहेंग लगे ना फटकड़ी और रंग चोखा आए, ऐसे लगता है। देखिए ना, नमाज भी पढ़ेंगे, उठना है, वजू करना है, बैठना, और इंसान को अपनी बदन पे बोझ लेना बड़ा मुश्किल लगता है। नींद छोड़ना, उठना, नमाज पढ़ना मुश्किल लगती है ना। हर इबादत सोचिए, रोज़ा रख के बैठे में जान पे पड़ी हुई है ना, भूख है, प्यास है, सर में दर्द है, कुछ से कुछ हो रहा है ना। लेकिन माल देते हुए क्या है, सिर्फ एक चीज़ अपने दिल में पैदा कर लें, सिर्फ एक चीज़, कुल्लू मना रही हम पास, इस माल की मोहब्बत दिल से निकालें। वल्लाही आप झुक झुक के देख रहे होते हैं मौके किधर है नेकियों के। माल देना सबसे सन्ना दर्द होती है, ना उठ के वजू करना पड़ता है, ना चलना पड़ता है, माल पड़ा हुआ दे दिया फिर आ जाएगा, तवक्कुल भी बढ़ता जाएगा। बस एक दुआ करने की ज़रूरत है कि अल्लाह दिल का बुखल निकाल दे, तो आप देखेंगे कि आप अल्लाह और उसके रसूल की पुकार पे लब्बैक कहने वाले हैं। कब? जब के रसूल तुम्हें इस चीज़ की तरफ बुलाए जो तुम्हें ज़िंदगी बख्शने वाली है। ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ ज़िंदगी बख्शती है? इसकी तफसीर में कई दफ़ा दर्ज किया है, पसंदीदा आयतों में से एक आयत है। जिहाद की पुकार, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर की पुकार, अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तर्ज ज़िंदगी पे चलो, अपना लाइफस्टाइल आसान करो, सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। सिर्फ नमाज की सुन्नतों पर ही ना लड़ते रहा करो कि चार है कि छः हैं, कभी ज़िंदगी गुजारने की भी तो सुन्नतों पर आओ, खाना ज़ाया करने की सुन्नत पर भी आओ, तो ज़िंदगी बख्शता है ये दीन। वल्लाही ये किताब हमारे लिए लाइफ सेवर है। तो ख़ुद को पूछिए कि ये किताब मुझे ज़िंदगी दे रही है, मेरा अंदर ज़िंदा हो रहा है इसको पढ़ के। और जान रखो कि अल्लाह आदमी और उसके दिल के दरमियान हायल है। या कि एक शेर खाली है, फारिया पा गया चाहिए प्लीज़। अल्लाह बंदे और उसके दिल के बीच में हाइल हो जाता है और उसी की तरफ तुम समेटे जाओगे। इसको हाईलाइट कीजिए, अपने प्यारे प्यारे हाथों से अपने शायद को लिख के अपनी आंखों के सामने किसी ऐसी जगह पे लगाना है जिसको आप अक्सर देखें। अल्लाह बंदे के बीच और उसके दिल में हाइल कब होता है? जब निफाक आता है। जब इंसान निफाक की रविश पे चलता है तो अल्लाह सुबहान तला उसके बाद एक सज़ा उसको ज़रूर देता है कि उसका दिल हिदायत के लिए नहीं खुलता, हिदायत से दिल पलटने लगता है। इस तरह से एक इंसान अपने आप को पीछे करता है, उसको समझ नहीं आती हर रोज़ कोई वजह हो जाती है मेरी। आप कह लीजिए कि हर रोज़ कोई बहाना बन जाता है। आप पूरे इखलास के साथ रात को रो के सोचते हैं कि मैंने फजर वक्त पे पढ़नी है, फिर वो सुबह आँख नहीं खुलती, फिर फजर कज़ा। आप कहते हैं मैंने ये काम करना, नहीं होता। आप कहते हैं मैंने क्लास में वक्त पे आना है, फिर नहीं आते। ये अल्लाह हायल होता है। और ये कब होता है? जब हम अल्लाह के दीन को सुनने के बाद अपने अंदर कोई गर्मी महसूस नहीं करते, हम यूज़ टू हो जाते हैं उसने की के, हम उसके ऊपर अपने आप को इस तरह महसूस करते हैं कि नहीं, मैं अपने बारे में ज़्यादा अच्छा फैसला कर सकती हूँ। देखिए वो अल्लाह जो दिलों को जानता है, जो राजों को जानता है, जिसको पता है इस वक्त भी आप क्या सोच रहे हैं, नीयतें, ख्वाहिशें, इरादे, अगराज, मकासद, ख्यालात, सब कुछ उसको पता है। क्या हमें उससे भाग के जा सकती? माँ से नहीं बंदा छुपता, माँ को भी पता चलता है बच्चा खुश है कि नहीं खुश। तो 70 माँ से ज़्यादा प्यार करने वाली ज़ात, क्या वो हमसे दूर है? क्या वो हमें नहीं जानती? इसलिए फरमाया कि मैं खुद तुम्हें फिर रोक लेता हूँ, मुझे पता है तुम नहीं चाहते, मैं फिर तुम्हें नहीं मजबूर करता, लेकिन याद रखो इसी की तरफ तुम समेटे जाओगे।